नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कीजिए, 1811-7000 और 1800-102-7001। श्रोताओं, आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते में मौसम काफ़ी बदल गया है। बदलते मौसम के बीच भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में चुनाव जीत गई है। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इसी दौरान तेलुगु देशम पार्टी के दो मंत्रियों ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। और उससे पहले उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे यानी अखिलेश और मायावती एकजुट हो गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार को फिर से सत्ता में हरगिज नहीं आने देंगे। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस घटनाक्रम पर हम वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह को शामिल करेंगे। उससे पहले आज हम पहले श्रोताओं के पास चलेंगे और इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। कौन बोल रहे हैं?
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
जी भीष्मपाल सिंह बोल रहा हूँ।
भीष्मपाल जी उत्तर प्रदेश के एटा से बोल रहे हैं, कहिए, रखें अपनी बात।
जी सर, ऐसा है राजनीति में कब समीकरण बदल जाए कुछ पता नहीं लगता है। अब देखिए बीजेपी की स्थिति आज बेशक 21 राज्यों में उसका शासन है, बड़ी तेजी से प्रगति की है बीजेपी ने, लेकिन कुदरत का नियम यह भी है कि जितनी तेजी से जो चीज ऊपर उठती है फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। आज परिस्थितियां ये हैं कि देखिए सत्ता होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव उपचुनाव बीजेपी हार गई और गुजरात में भी ग्राफ गिरा है। आप देखिए अभी त्रिपुरा में बेशक जीती है पूर्वोत्तर में, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत अब उसकी नाजुक हो चली है क्योंकि सपा बसपा के मिलने से। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में राजद के साथ ही निपटा देंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी है और आंध्र प्रदेश में नायडू जी अलग हो रहे हैं।
अच्छा भीष्मपाल जी, भीष्मपाल जी ये बताइए कि ये जो विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश पहले भी करती रही हैं और एक बार फिर कोशिश कर रही हैं एकजुट होने की, आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीतिक दल एकजुट हो पाएंगे? आप एक आम इंसान की तरह कैसे इसे देख पाते हैं, कैसे समझते हैं आप इसे?
सर ये बात सही है कि पहले एकजुट होती रही हैं ये पार्टियां, लेकिन इस समय सवाल पार्टियों का नहीं, सवाल पब्लिक का है सर। कि इन्होंने 2014 में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 15 लाख की वापसी, काला धन, लोकपाल की नियुक्ति, कोई एक मुद्दा आप मुझे ऐसा बताएं जिस पर कहीं भी इन्होंने कोई एक कदम आगे रखा हो। और उल्टे आज देखिए आप महाराष्ट्र का किसान की क्या स्थिति हो रही है, 40-30-40 हजार किसान मार्च कर रहा है, तो वहाँ 48 सीटें आती हैं महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में स्थिति खराब है, वहाँ से कितनी सीटें आती हैं?
भीष्मपाल जी आप तो ये बताइए कि आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं?
देखिए साहब, विपक्ष की परिस्थितियाँ, एकजुट होने की परिस्थितियाँ होती हैं राजनीति में। आज परिस्थितियाँ उस मोड़ पर खड़ी हो गई हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, देश की बात जनहित की बात नहीं हो रही, केवल देश को नकली राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है। इन परिस्थितियों में विपक्ष भी ये समझने लगा है कि आज की परिस्थितियों में अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो देश में बहुत भारी समस्याएं खड़ी होने वाली।
बहुत अच्छा लगा भीष्मपाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में हम वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को शामिल कर रहे हैं। अजय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
ये कार्यक्रम हम इस सवाल से आपसे शुरू कर रहे हैं कि जो त्रिपुरा में 25 साल पुराना किला ढह गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इस जीत को आप, भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं?
देखिए इसके मायने तो बहुत बड़े हैं, जैसा कि सब लोगों ने कहा, पीएम ने खुद कहा कि ये आइडियोलॉजिकल जीत है। मतलब एक आइडियोलॉजी का जो ऐसा माना जाता था गढ़ है और गढ़ में कोई सेन नहीं लग सकती है, तो वहाँ पे ना सिर्फ सेंध लगी बल्कि अच्छी तरह से सेंध लगी। तो अगर उस तरह से आप जीत देखें तो ये हल्की जीत नहीं है। और दूसरा, इस समय जबकि बीजेपी के अगेंस्ट एक माहौल बन रहा है जिसमें कि एंटी बीजेपीज़म का जोर है, उसमें अगर एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक आपका धराशायी होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस रूप से अगर आप देखें राजनीतिक रूप से।
अजय जी, आपको लगता है कि त्रिपुरा वाली स्थिति केरल में संभव है क्या? केरल अब भारत का एकमात्र राज्य बचा है जहाँ पर वामदलों की सरकार है।
देखिए, संभव तो है, क्योंकि अगर आप तीन साल पहले हमसे पूछते तो हम आपसे यही कहते कि साहब वहाँ असंभव है, ये लोग जाएंगे कैसे बीजेपी। तो अगर वहाँ पे हो सकता है तो इधर भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पे ये नहीं हो सकता है, लेकिन अभी की हालात अगर आप देखें तो ये ज़रूर लगता है कि थोड़ा मुश्किल है।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कौन और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करेंगे इस समय, कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
जी, मैं अमिताभ पांडे बोल रहा हूँ भोपाल से, नमस्कार करता हूँ आपको।
पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ त्रिपुरा के जो परिणाम आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, और ये समझ में नहीं आता कि जनता इस जनादेश से क्या बताना चाहती है, त्रिपुरा में जो जनादेश आया है उससे, और क्या मतलब एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बिल्कुल ईमानदारी का एक प्रतीक बन गया और वो अचानक मतलब पूरा उनका पूरा कुनबा सिमट जाए एकदम से, तो ये बड़ा चौंकाने वाला मामला लगता है मुझे। और
लेकिन पांडे जी, जनमत को आप नकार नहीं सकते, जनता ने चुना है तो आप इसको नकार नहीं सकते, इस पर हैरानी भी आप जाहिर नहीं कर सकते इस तरह से, ये जनता की जीत है। ये बताइए कि पांडे जी, आपको लगता है कि जो विपक्ष में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें रंग लाएंगी, दम लगता है आपको इसमें?
विपक्ष का एकजुट होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये मुझे लगता है इसके नतीजे बेहतर तो आएंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी विपक्ष में प्रमुख पार्टी कांग्रेस है और उसके जो लीडर है राहुल गांधी, उनको ये प्रूव करना होगा कि वो जो है सारे विपक्षी दलों का नेतृत्व कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कसर बाकी है उनकी लीडरशिप में, उनको प्रूव करके दिखाना होगा कि वो एक सक्षम नेतृत्व दे सकते हैं पूरे विपक्ष को। मुझे लगता है इसमें अभी थोड़ी और कहीं कुछ कमी है, ऐसा मैं सोचता हूँ।
बहुत शुक्रिया पांडे जी भोपाल से। पांडे जी के बाद कार्यक्रम में कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
जी, मैं गौरव दुबे हूँ, गोरखपुर से।
गोरखपुर से दुबे जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात।
धन्यवाद। जहाँ तक सवाल, अभी मैं दोनों श्रोताओं को सुन रहा था
जी,
राजनीति में चौंकाने वाला ये शब्द ही गलत है, अप्रत्याशित।
जी,
लोकतंत्र है, जनता का मूड है। जहाँ तक मणिपुर की बात है कि माणिक सरकार ईमानदार थे, ईमानदार होना आज के दौर में अपने आप में ये गलत है। अगर आदमी ईमानदार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो सबसे पहले तो वो अपने घर से बाहर किया जाएगा, और माणिक सरकार साहब ईमानदार हो सकते हैं, 25 साल का उनका शासन था, लेकिन उनका मंत्रिमंडल ईमानदार हो या वहाँ की पब्लिक ईमानदार हो, ऐसा नहीं है।
अच्छा दुबे जी, ये बताइए, ये सवाल हम आपसे भी रख रहे हैं कि जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, ये आपको लगता है कि विपक्ष में इतना दम बचा हुआ है अभी भी कि 2019 से पहले एकजुट हो जाएं?
नहीं, आखिर ये सवाल कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष एकजुट क्यों ना हो? मोदी साहब अपने अभी यूपी का चुनाव लड़ा था, लोकसभा का आम चुनाव, और उन्होंने अपना दल से, भारतीय समाज पार्टी से, सुहेल देव की पार्टी से, तमाम जगहों ने उन्होंने अलायंस किया था और वो सफल भी रहा। तो विपक्ष अगर ऐसी कोशिश करता है तो निश्चित रूप से ये विपक्ष के हित में होगा।
बहुत शुक्रिया दुबे जी, बहुत शुक्रिया दुबे जी अपनी बात रखने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह कार्यक्रम में आपको दोबारा शामिल कर रहे हैं। दो दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा, तेलुगुदेशम पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से अपने दो मंत्रियों को वापस बुला लिया, दोनों मंत्रियों ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। तो क्या इसे एनडीए सरकार में शामिल घटक दलों में बिखराव की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है? और भी घटक दल हैं, शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, जनता दल यूनाइटेड है, वगैरह वगैरह।
देखिए, रीजनल पार्टीज़ का बिहेवियर जो होता है ना, वो इसी तरह का होता है। और दूसरा, अगर आप देखें तो भाजपा जो 2004 में थी, वो आज भाजपा नहीं है। भाजपा आज अपने मतलब अगर आप देखें तो उनको किसी के साथ अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उनके पास इतना बहुमत है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो रीजनल जो दल होते हैं वो बार्गेन के लिए उनका रहता है। तो ये हमें लग रहा है उससे ज़्यादा अगर इसका इसको आप देखिएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा देखना हो जाएगा। हमें लग रहा है कि वो TDP इसको उसी रूप में देख रही है कि किस तरह से मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो उससे कर ले NDA से।
अच्छा, आपको लगता है कि जो मोदी सरकार में जो घटक दल हैं, और क्या ये सरकार अपने बाकी घटक दलों के बीच एकजुटता बना के रख पाएगी? ये चुनाव आ रहे हैं, सबको अपना अपना एजेंडा लेकर अगले चुनाव में जाना है हर दल को।
हमें लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आज की हालात देखें तो कोई अपोजिशन इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो कोई एक इस तरह का दृश्य आपके सामने रखे कि उनके पास कोई जाए। तो उस स्थिति में भाजपा, हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये जो दल हैं, रीजनल दल हैं, वो ये सोचेंगे कि ये अटल आडवाणी वाली जो पार्टी थी वो पार्टी है, तो ये वो पार्टी नहीं है। ये रीजनल लेवल पे भी जो स्पेस है उसमें ये भरना चाहेगी, और रीजनल जो दल इनके साथ के भी हैं उनके साथ ये अपना जो डेवलपमेंट है उसको रोकेगी नहीं। पहले क्या होता था कि जो रीजनल होते थे दल वो रोक लेते थे, अब वो स्थिति नहीं है। अब ये एग्रेसिव भी हैं और ये चाहते हैं कि इनका अपना भी जो डेवलपमेंट हो वो उसी रूप में होता रहे।
अभी आपने जिक्र किया था कि अपोजिशन नहीं है, ऐसा क्यों लगता है आपको, विपक्ष क्यों नहीं है?
अपोजिशन कुछ दे नहीं पा रहा है ना, ऑल्टरनेटिव कुछ भी तो दे कोई
कुछ तो,
ऐसा
कुछ तो रणनीति पे काम कर रहा होगा विपक्ष।
नहीं, बिल्कुल कर रहा होगा, और आप देख रहे हैं जैसे बाय इलेक्शन में दिखाई दे रहा है, तो बाय इलेक्शन में दो UP के दल हैं जो एक साथ हुए हैं, तो बाय इलेक्शन में वो साफ है। पर सबसे दिक्कत ये हो रही है कि ऑल्टरनेटिव जो एक वो सामने आता है ना, वो आपके पास है नहीं, तो इसलिए अपोजिशन अजीब सा वीक दिखाई दे रहा है।
अच्छा, ये विपक्ष की कमजोरी, ये इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है या इस कमजोरी का श्रेय स्वयं विपक्ष को जाता है, क्या लगता है आपको?
मोदी सरकार को बहुत ज्यादा चीजें देना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मतलब एट्रीब्यूट हर चीज उन पे करना, वो लगेगा कि मतलब जैसे कि अपोजिशन भी उनके हिसाब से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति है नहीं। दिक्कत ये हो रही है कि अपोजिशन के पास ही इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें कि वो मोदी के सामने एक इफेक्टिव कोई चीज़ लेके जाए, तो वो नज़र आता है।
बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, चर्चा को जारी रखते हुए और श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं। कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं?
हेलो
जी,
जी नमस्कार सर। मेरा नाम महेश कुमार तिवारी है।
महेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मूलतः मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ।
जी,
तो जिस प्रकार से चर्चा का विषय बहुत स्पष्ट है कि एक संगठित विपक्ष की आवश्यकता, क्योंकि अभी जैसा कि हम हाल ही में देख रहे हैं हमारे बगल के ही लोकसभा सीट फूलपुर और गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से सपा और बसपा एक साथ आ करके एक शून्य की स्थिति लगभग उत्पन्न हो गई थी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद, विपक्ष की उसको जिस प्रकार से भरने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में एक सत्ता पक्ष के साथ साथ एक अच्छा विपक्ष का भी होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा या जो बड़ी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, थोड़ा उसमें प्रयास में निरंतरता लाने की आवश्यकता होगी, तभी एक अच्छे लोकतंत्र की व्यवस्था की जा सकेगी।
बहुत शुक्रिया महेश जी अपनी बात रखने के लिए कार्यक्रम में। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं विवेक बोल रहा हूँ, जोगलेकर।
विवेक जोगलेकर जी, आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं?
मैं बिलासपुर से, छत्तीसगढ़
जी। बहुत स्वागत कार्यक्रम में, रखिए अपनी बात
जी। ये अभी जो बात हो रही थी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अपनी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें संसद के स्तर तक तो दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों की दखल जो है वो थोड़ी आवश्यकता से अधिक हो गई है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों के हित जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, इसलिए उनका ध्यान जो है अधिकतर अपने अपने राज्यों में केंद्रित होना चाहिए। जब इनकी दखल केंद्र में हो जाती है तो वो अपने हितों के लिए राष्ट्रीय पार्टियों पर दबाव पैदा करते हैं। जो राष्ट्रहित में होता है ऐसा लगता नहीं, और इसीलिए एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष जिसकी राष्ट्रीय प्रतिभा हो और प्रतिमा हो वो होना चाहिए। जैसे आज अगर आप देखते हैं कि भाजपा अगर सत्ता में है तो कांग्रेस जो है वो एक विकल्प है और उसको मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये प्रजातंत्र के हित में है।
अच्छा जोगलेकर जी, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है
जी,
ये आपको क्या लगता है कि इस जीत को एक आम इंसान की तरह आप कैसे देखते हैं?
देखिए बात यह है कि कांग्रेस एक विकल्प के रूप में अभी लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। जो सत्ता पक्ष था उस पक्ष ने पिछले अनेक वर्षों से कोई जनहित में कोई जिसको हम कहते हैं कि ऐसे काम किए हुए नहीं दिखाई देते हैं जिससे जनता उनके प्रति आस्थावान रहे। तो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जैसे एक अंग्रेजी में शब्द है उसके तहत जो है वो भाजपा को वोट मिला है क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो जनहित में कुछ करते हुए नहीं दिख रही है, वो केवल पुरानी चीजों को ही दोहरा रही है, नया कुछ नहीं हो रहा है। और मैं एक मैंने साम्यवादियों के साथ मेरी एक बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि वर्ग संघर्ष की और सर्वारा वर्ग की भलाई के काम करने के लिए बनी पार्टी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है कि लोगों को लगता है कि भाई हमारा हित कहाँ है। संभव है कि ये भी इस चुनाव में दिखाई दिया हो उनके वोटिंग में।
बहुत शुक्रिया जोगलेकर जी अपनी बात रखने के लिए। कार्यक्रम में एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह को शामिल कर रहे हैं। अजय जी, अभी दो दिन पहले की ही बात है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने बड़े खुलकर कहा कि जो विपक्ष के अन्य नेता हैं उनके साथ वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगी जैसे पहले बढ़ाया था और विपक्ष को दोबारा एकजुट करने की कोशिश करेंगी। और उन्होंने ये बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि वो 2019 में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगी। तो ये जो ललकार है, हुंकार है, ये इसमें शब्द कितने हैं और सतही तौर पर, ज़मीनी तौर पर असल वज़न कितना है? क्या अभी राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो छिटपुट दल हैं और विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो इस स्तर पर पहुंच पा रही हैं कि एकजुट होकर, एक गठबंधन बनाकर 2019 के चुनाव में चुनौती पेश कर सकें सामूहिक रूप से?
साफ तौर पे दिख तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा एफर्ट हो भी रहा है तो ये अच्छी बात है। सोनिया जी जो कह रही हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑफिशियल उनके पास पोस्ट नहीं है लेकिन एक अपोजिशन की जो अच्छी नेता हैं उसके रूप में उनका ये स्टेटमेंट, उसको वैसे ही देखना चाहिए क्योंकि कोई भी अपोजिशन का आदमी ये तो नहीं कहेगा कि हम जो रूलिंग पार्टी है उसको फिर आने देंगे। तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ये एफर्ट रिज़ल्ट लाता है, यानी ये जो एफर्ट है ये बाकी जो दल हैं उनको ले के अपने साथ आता है तो ये एप्रिसिएटिव स्टेप होगा। अगर ये ले आ पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, जो स्थितियां हैं उसमें दिखता नहीं है।
क्या लगता है आपको आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्यों वो उभर के वैसे बाउंस बैक करने वाली जो बात होती है वो क्यों इस तरह से संदेह होता है कि वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाएगी? क्या बड़ी कमजोरी नजर आती है आपको?
देखिए माइंड स्पेस में ही नहीं है। पीएम का अगर आप देखें, बीजेपी का देखें, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और राजनीतिक रूप से लोगों के माइंड स्पेस पे पूरी तरह से हावी है। अल्टरनेटिव अगर कुछ ये देते और ये भी माइंड स्पेस पे आते तो शायद ये एक एहसास होता कि शायद ये भी रेस में है। वो माइंड स्पेस पे है ही नहीं और सिर्फ बोल रहे हैं और बोल भी ऐसा रहे हैं जिससे कि कोई लोगों में उसका जो एक इफेक्ट होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए लगता है ऐसा। लेकिन राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें एक साल बहुत टाइम होता है, तो अगर कुछ हो जाए तो मुझे पता नहीं है।
अच्छा, इसको हम यदि इसी बात को पलट कर पूछें, ये कांग्रेस की कमज़ोरी है, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या नज़र आती है? जो लगातार वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब मेरे ख्याल से 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 6 या 7 राज्यों में, और अब जब लोकसभा चुनाव का एक साल बचा है बढ़ते बढ़ते 21 राज्यों में उसकी सरकार किसी ना किसी रूप में, चाहे गठबंधन में ही क्यों ना हो, सत्ता पे काबिज है। तो ये कौन सी ऐसी खास बात है भारतीय जनता पार्टी में उसके नेतृत्व में कि वो एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती जा रही है और विपक्ष लगातार कोशिशों के बावजूद भी कहीं उसे चुनौती देता भी नज़र नहीं आता।
देखिए, अगर आप इसका स्थिति देखना चाहें तो 2009 में भाजपा की जो हालत थी वही हालत इनकी है। 2009 में भाजपा, अगर आप देखें तो भाजपा कहीं थी ही नहीं, तो भाजपा हार गई इलेक्शन। सोनिया जी जो बोल रही हैं उसमें ठीक है, वो एक नेता के रूप में वो बोल रही हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटजी के टर्म्स में देखें तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो इतना वीक हो गया है कि अगर आप आज जाके खुद पूछिए उनके पास कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में है क्या, तो उनको खुद नहीं पता है।
2004 में हमने देखा था सोनिया गांधी खुद पैदल चलकर रामविलास पासवान के घर गई थी समर्थन जुटाने के लिए, और भी उन्होंने तमाम नेताओं से हाथ बढ़ाकर समर्थन मांगा था। इस समय और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कौन श्रोता इस समय जुड़ गए हैं हमसे?
हेलो
जी, कौन सा?
हेलो, नमस्ते
जी। नमस्ते,
मैं गांव खारा सांचो राजस्थान से बात कर रहा हूं, रेखाराम बुनकर सर।
बुनकर साहब, बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात।
मैं सर आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि राजनीति का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि अशिक्षित और अशिक्षित समाज के अंदर भावपूर्ण मुद्दे हमेशा ही हावी रहते हैं, तर्कपूर्ण मुद्दे हैं वो गौण रहते हैं। तो जो मोदी जी के जो वक्तव्यों से, भाषणों से भारत की आम जनता है जो उनकी भावनाओं में बह जाती है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। और उनकी ब्यूरोक्रेसी और उनकी जो टेक्नोलॉजी, उनकी वजह से जो देखा जाता केंद्र में सरकार है तो अधिकतर राज्यों में आने वाली सरकारें हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में मैं भारत के अंदर गंगा जमुनी संस्कृति के तहत सेक्युलरिज्म पार्टियां हैं वो ही सरकार बनाएगी, मेरी बात ये है।
राजस्थान से बुनकर साहब का आपने सुना। अजय जी, आप देख रहे हैं बिहार के अररिया में और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, तगड़े मुकाबले हैं। आपको लगता है कि यहाँ के नतीजे जो भी आएँ, जिसके भी पक्ष में आएँ, जिसके भी खिलाफ जाएँ, क्या ये नतीजे किसी तरह हवा का रुख बताते हैं, ऐसा माना जाए जो भी नतीजा आए चाहे वो किसी के भी पक्ष में जाए?
इसमें देखिए कोई वो नहीं है कि अगर बाई इलेक्शन में रिजल्ट्स जो आते हैं वो एक राजनीतिक जो धारा है उसको इंडिकेट ज़रूर करते हैं।
इससे पहले आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई है?
हाँ, शिकस्त हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये अलायंस के बाद ये रिजल्ट्स आते हैं तो यूपी में क्या होगा? यूपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यूपी में अगर मान लीजिए भाजपा हारता है तो उसका जो वो होगा वो कोई बहुत अच्छा नहीं होगा इनके लिए। और अगर जीत जाते हैं तो एक ये होगा कि अच्छा ठीक है, हम जीत गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन रिजल्ट्स को आप सिर्फ ऐसा लें कि बाई इलेक्शन का रिजल्ट है और इसका आगे आने वाले टाइम में असर नहीं होगा, तो ये शायद ठीक नहीं होगा।
अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे थे, सपा बसपा भी एक दोनों हाथ मिला के बड़ी ताकत बन सकते हैं?
बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर बीएसपी और एसपी एक साथ आते हैं तो सामाजिक स्तर पे वो जो कोलिशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो इतना भारी है कि वो भाजपा के लिए मतलब अच्छी खासी दिक्कत करेगा अगर ये वोट में हो जाता है तो। ट्रांसलेट
तो ये जो वोट परिवर्तित होंगे जनमत में, ये अभी जब फूलपुर और उत्तर और आपके गोरखपुर के नतीजे आएंगे तो काफ़ी हद तक, और अररिया में नतीजे जब आएंगे तो काफ़ी हद तक तस्वीर समझने में हमें मदद मिल सकती
जी,
है।
जी बिल्कुल।
तो आज हम बीबीसी इंडिया बोल में कार्यक्रम को यहीं संपन्न कर रहे हैं। अजय सिंह जी, आप स्टूडियो आए, चर्चा को सार्थक बनाया, आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया देश दुनिया में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का, और हमेशा की तरह माफ़ी चाहेंगे हम उन श्रोताओं से जिन्हें हम चाहकर भी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, अगले हफ्ते अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप कोशिश कीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको शामिल कर लें। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान, और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।